अगर इस एक साल साथ रहने के दौरान हम में से किसी को सामने वाले से प्यार हो गया तो?
ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कायरव ने चौंकते हुए सवाल किया। इनाया ने तुरंत सर हिलाया। यस, इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोचो अगर एक साल मेरे साथ रहते रहते तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो क्या होगा, और अगर प्यार नहीं भी हुआ और इस एक साल में कभी तुम अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मेरे करीब आ गए, मुझ पर पति होने का हक जताया, तो क्या करोगे तुम और मैं इस सिचुएशन में क्या करूंगी? बातों में लॉजिक था। कायरव ने संजीदगी से जवाब दिया। अगर इस एक साल में मुझे तुमसे प्यार हो जाता है या हमारे बीच वो सब हो जाता है जो आमतौर पर हस्बैंड वाइफ के बीच होता है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से तुम्हारा क्या मतलब है? उस केस में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, और अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो मैं लाइफ टाइम एक हस्बैंड होने की सभी ड्यूटीज निभाऊंगा। हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिंपल मैरिज बन जाएगी, और तब मैं पूरी दुनिया के सामने तुमसे शादी करूंगा। और अगर तुम्हें नहीं, मुझे बाय चांस तुमसे प्यार हो गया तो? इनाया ने तुरंत ही अगला सवाल किया, जिसे सुनकर कायरव बुरी तरह चौंक गया। ऐसा पॉसिबल है? मतलब तुम्हें मुझसे प्यार हो सकता है? इस वक्त कायरव की आंखों में अजीब सी बेचैनी और चमक थी। इनाया ने झेमते हुए कहा, नहीं हो सकता, फिर भी सिक्योरिटी के लिए सब पहले ही पूछ लेना चाहिए। कायरव के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने ठंडी आह भरते हुए जवाब दिया, अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ तो जो तुम चाहोगी वही होगा। न मैं जबरदस्ती तुम्हें खुद से दूर करूंगा और न ही बिना तुम्हारी इजाजत के तुम्हें अपने साथ रखूंगा। उस सिचुएशन में हमारे रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा ये तुम डिसाइड करोगी। कायरव का जवाब सुनकर इनाया चौंक गई। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हो सकता है ना कि मुझे तुमसे प्यार हो पर तुम्हें ना हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूं पर तुम ऐसा ना चाहते हो। फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि जो मैं चाहूंगी वही होगा? तुम क्या खुद को मेरे साथ रहने के लिए फोर्स करोगे? पर ऐसा क्यों करोगे तुम? और अगर बिना मन के तुम मेरे साथ रहे तो क्या खुश रह पाओगे और तब मुझे खुश रख सकोगे? मैं खुद को फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए प्रेशराइज कर रहा हूँ, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने होंगे। इसलिए अगर इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन के बीच तुम्हें मुझसे प्यार हो जाता है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और आखिरी डिसीजन लेने का राइट तुम्हारे पास होगा। अगर तुम चाहोगी तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके हम रियल कपल जैसे साथ रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी मुझसे प्यार करने और शादी करने के डिसीजन पर रिग्रेट ना हो, मैं तुम्हें खुश रख सकूं। पर तुम तो बंधन में बनना ही नहीं चाहते, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहते हैं, इनाया ने तपाक से सवाल किया और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। मैं किसी से ज़बरदस्ती के बंधन में नहीं बनना चाहता, पर अगर उस रिश्ते में प्यार और अंडरस्टैंडिंग हो तो मुझे ऐसे रिश्ते को निभाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम मुझसे ऐसे शादी करने की जगह अपने लिए कोई ऐसी लड़की क्यों नहीं ढूंढते जिसके साथ तुम्हें शादी का सौदा ना करना पड़े, जिससे तुम प्यार के अटूट बंधन में बंध हो हमेशा हमेशा के लिए, ना कि एक साल का ट्रायल पीरियड के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि प्यार कोई प्लान करके करने की चीज़ नहीं, वो कब किसे किससे हो जाए कोई नहीं जानता। पता नहीं कब मेरी लाइफ में वो लड़की आएगी, या कभी आएगी भी या नहीं। फिर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं, और ना ही प्यार दो दिन में होने की चीज़ है। फिलहाल जिस सिचुएशन में मैं फंसा हूँ उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तब भी तुम इतने अमीर हो, तुम्हें तुम्हारी क्लास, स्टेटस और बैकग्राउंड वाली कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी इस काम के लिए। फिर तुमने मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की को ही क्यों चुना और मुझसे ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों करना चाहते हो? सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी रिच फैमिली की लड़की जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, वो अपनी लाइफ का सौदा कभी करना नहीं चाहेगी, और अगर किसी ने किया भी तो वो उसका कोई ना कोई मतलब छुपा होगा। हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए मेरी ज़िंदगी में घुसने का एक जरिया बन जाए और बाद में वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। मिडिल क्लास फैमिली से किसी दूसरी लड़की को चूज़ करना भी रिस्की है, क्योंकि वो भी अपना फ़ायदा देखेगी, पावर और पैसे के लिए मेरी डील एक्सेप्ट करेगी। अगर उसका लालच बढ़ा तो फ्यूचर में मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जो मैं नहीं चाहता। तुम्हें चूज़ करने के पीछे कई रीजंस हैं, जिनमें से कुछ मैं पहले बता चुका हूँ, और जो मेन रीज़न है वो है तुम्हारा नेचर। तुम पर मेरे पावर, पैसे, पोजिशन, किसी का कोई असर नहीं हुआ। तुम जानती थी कि इस डील से तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर भी तुमने मेरी डील रिजेक्ट कर दी। अपने फ़ायदे की जगह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना, तुम्हारी यही खूबी मुझे पसंद आ गई। जितना मैंने तुम्हें समझा और जाना है, मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी लड़की की तलाश मुझे थी अपनी कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ बनने के लिए, एंड आई डोंट थिंक कि तुम्हारी जैसी मुझे कोई दूसरी मिलेगी। मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, यही वजह है कि मैं तुम्हें कन्विंस करने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ। इनाया के दिमाग में कायरव की कई बातें घूम रही थी, पॉइंट था उसमें, इनाया कन्विंस होने लगी थी। कायरव ने कुछ सेकंड रुकते हुए आगे कहा, आई प्रॉमिस, अगर तुम मेरी डील एक्सेप्ट करती हो तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। इस एक साल में मैं तुम्हें इस लायक बना दूंगा कि उसके बाद तुम्हें कभी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर कर दूंगा, प्रोफेशनली आगे बढ़ने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। एक साल के टाइम पीरियड के बाद अगर हम अलग होते हैं तो मैं इंश्योर करूंगा कि उसका तुम्हारी ज़िंदगी पर ज़्यादा असर ना पड़े, तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जी सको। ऐसे कैसे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा? डिवोर्स के बाद मैं तो इस दुनिया के लिए छोड़ी हुई औरत बन जाऊंगी, बिल्कुल उस टिश्यू पेपर्स की तरह जिसे तुम जैसे अमीर लोग इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। नहीं होगी बर्बाद, तुम पर हमारे रिश्ते के टूटने का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बस जब हम कपल की तरह साथ रहेंगे तब तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे लॉयल रहना होगा, किसी भी स्कैंडल में फंसने से बचना होगा, तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा होगा तो मेरी इमेज का ध्यान रखते हुए कुछ भी करना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी फैमिली और दुनिया के सामने ऐसे प्रिटेंड करना होगा जैसे हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और साथ में बहुत खुश हैं। इस दौरान तुम्हारा किसी के साथ कोई अफेयर या रिलेशन नहीं होना चाहिए। तुम्हारी इस बात से मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ कि डिवोर्स का मेरी लाइफ पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए इस बात को यहीं छोड़ देते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल मुझे कुछ और बातें क्लियर करनी है। बोलो, इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान तुम मेरे करीब आने या मुझे छूने की कोशिश नहीं करोगे? जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। इनाया को ये जवाब थोड़ा अटपटा सा लगा, पर उसने ज्यादा ना सोचते हुए सर हिला दिया। अच्छा, एक और सवाल था मेरे मन में, वो भी पूछ लो, जो भी डाउट है अभी ही क्लियर कर लो। इनाया ने अपनी हाथ की उंगलियों को आपस में उलझाया और छिचकते हुए बोली, अगर बाई चांस इस एक साल के दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा? इनाया नजरें चुराते हुए कातर निगाहों से कायरव को देखा, जो अब भी एकदम शांत नजर आ रहा था। इसमें केसेस बनते हैं, जैसे अगर तुम मेरे साथ रहकर उस बच्चे की परवरिश करना चाहो और मेरी भी यही इच्छा हुई तो हम अपनी फैमिली बनाएंगे। दूसरा, अगर मैं तुम्हें और उस बच्चे को चाहता हूँ पर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, उसे ना मैं तुम्हें मारने की इजाजत दूंगा और ना ही अपने साथ ले जाने की परमिशन दूंगा।
तीसरा केस, अगर तुम उस बच्चे को लेकर मेरे साथ फैमिली बनाना चाहो पर मैं इसके लिए तैयार ना हूँ तो मैं तुम्हारे और बच्चे की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मेरे वजह से तुम्हें और उस बच्चे को कोई परेशानी ना हो। कायरव का नॉर्मल रिएक्शन देखकर इनाया भी नॉर्मल हो गई और कॉन्फिडेंस के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने रखने लगी। अगर तुम्हारी खुशी हमारे नहीं किसी और के साथ हुई तब क्या करोगे तुम? टू बी कंटिन्यूड। स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक एंड कॉमेंट करके बताएं।